धवला पुस्तक तेरवी लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम श्रुतात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाहूणं। मुनिसुवय जिनवसहं। सुवय मुनिवसह संतु अम्रमिं। कम्माणुयोयमिणमो वोक्षमणेयत्थ गन्तगयम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गना खंड, और उसके कर्म अनुयोग द्वार की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और तेरहवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 96 पर हम हैं, 96। तो हम यहाँ मनुष्य गति में देखेंगे। हमने देखे थे कि पहले 10 प्रकार के निक्षेप बताए कर्म किस किस को कहना। अब उसमें से यहाँ 6 बातें उन्होंने, हाँ 6 कर्मों की बात है। कौन कौन से 6 लिए हैं? पेज नंबर 90 पर देखो। हाँ, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधकर्म, बहुत अच्छा, क्रिया कर्म पहले ले, हाँ, तप कर्म और इरियापद। जैसे प्रयोग कर्म तो योग वाले सभी को होगा। समवदान कर्म जब तक वो 8-7 या 6 का बंध हो रहा है। अधक कर्म औदारिक शरीर वालों के है। इरियापथ कर्म जो है वो तो इरियापथाश्र वालों को जो है 11-12-13। तप कर्म मुनियों के होगा, यानी संयतों के। और क्रिया कर्म जो है वो सम्यक दृष्टियों के होता है। तभी कौन से मार्गणाओं में क्या क्या होता है उसकी बात अपनी चल रही। पहले हमने ओग से देखा, ओग से तो सभी हो गए। और फिर मार्गणाओं में हमने नर गति में देखा, तिरंच गति में देखा, अब मनुष्य गति में देखने जा रहे हैं। वैसे तो मनुष्य गति में तो सभी हो गए, है ना, देखो। परंतु अभी हमारी संख्या की बात चल रही। पहले होते कि नहीं होते इतना ही देखा कि कौन सी मार्गणा में कौन कौन से होते हैं, बस इतनी बात देखी। अब यहाँ देख रहे हैं कि उसकी द्रव्यार्थता यानी संख्या कितनी है, वो बात चल रही है यहाँ पर। देखो, मनुष्य गति में मनुष्यों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म की द्रव्यार्थता जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। ऐसा क्यों लिखते हैं? तो कहते कि लब्धि अपर्याप्तों की अपेक्षा मनुष्य कहने से पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए उसके अंदर। प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता, प्रदेशार्थता यानी अभी यहाँ क्या लेना है, जीवों के प्रदेश। असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि उनकी जीवों की संख्या असंख्यात और एक एक जीव के लिए लोक, तो टोटल असंख्यात लोक। क्योंकि घन लोक से जगत श्रेणी के असंख्यात वे भागों को गुणित करने पर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता का प्रमाण उत्पन्न होता है। अब समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि यहाँ कर्मों की जो हमने देखा ना, कर्म परमाणु की बात लेना है। क्योंकि जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग से यथा शास्त्र, जैसे शास्त्र में जो आगम में बताए वैसा, कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर समवदान कर्म की प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। वो ना हुआ ता कर्ण, देखो उसके द्रव्यार्थता श्रेणी के असंख्यात विभाग, और प्रदेशार्थता में क्या लेना है, अभी कर्मों की संख्या से गुणा करना है, और प्रयोग के लिए एक एक लोक से गुणा किया था, संख्या को मल्टीप्लाइड बाय लोक और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय अनंत। शेष चार पद ओघ के समान है, शेष चार पद यानी क्या है, तप कर्म वगैरह वगैरह। तो कहते इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है। ओघ में क्या बताई थी याद है?
असंख्यात।
हाँ, असंख्यात क्यों?
मटेरियल देव को लेना,
क्योंकि समय दृष्टियों की संख्या पल्ले के असंख्यात विभाग, इसलिए वहाँ असंख्यात कहा। पर मनुष्यों में समय दृष्टि मनुष्य संख्यात हो गए, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं। और प्रदेशार्थता असंख्यात है।
क्रियाकर्म की असंख्यात किस लिया?
एक जीव, देखो देखो, क्रियाकर्म के तो जीव प्रदेशों को ही लेना है ना।
एक का लोक प्रमाण, अच्छा संख्यात लोक प्रमाण होगा जाएगा।
एक लोक ही असंख्यात होता है, तो संख्यात लोग भी
संख्यात जी।
क्योंकि आगे लिखा है, संख्यात जीवों से घन लोक के गुणित करने पर क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। ये समझ में आ रही बात? भूल जाएंगे हम बार बार उसको देखेंगे तो याद होगा किसको क्या कहना, द्रव्यार्थता कब कहेंगे, प्रदेशार्थता से क्या मतलब है। प्रयोग में, समवदान में, द्रव्यार्थता में जीवों की संख्या लेना है, प्रदेशार्थता में
लोक प्रमाण एक
नहीं, अलग अलग। प्रयोग कर्म में लोक से गुणा करो और समवदान में कर्मों के जो अनंत परमाणु एक समय प्रबद्ध में उसको गुणा करो। क्रिया कर्म में भी जो समय दृष्टियों की संख्या है उसको हम द्रव्यार्थता कहेंगे और मल्टीप्लाइड बाय लोक, ये प्रदेशार्थता होगी। अब कहते हैं इसी प्रकार बाकी तो ओक के समाने ने तप कर्म कितने हो गए, संख्यात हो गए, क्योंकि संयतों की संख्या संख्यात होगी। एरिया पथ वाले
संख्यात,
वो भी संख्यात होगी। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में जानना चाहिए। देखो ओग निकालो पहले, पेज नंबर 93। वहाँ प्रयोग कर्म समवदान कर्म हमने देखा, मनुष्यों की अलग जो बात है संख्या, तो उसकी बात की थी। अब अधक कर्म वहाँ अनंत बताए थे, अधक कर्म
औदारिक शरीर तिर्यंश के लिए,
तिर्यंश के लिए मनुष्यों में वो ओक के समान बताया है, इसका अर्थ बताओ। अधक कर्म में द्रव्यार्थता किसको कहा है? देखो एक समय में जीव, नो कर्म स्कंध, एक समय में जीव वर्गणा कितनी ग्रहण करता है, आहार वर्गणा तो अनंत करते है, और उसकी प्रदेशार्थता है ना, एक एक वर्गणा में परमाणु अनंत है, तो पूरे अनंत वर्गणाओं में कितने हो गए, तो अनंत अनंत हो गए। इसलिए मनुष्य संख्यात होने पर भी
अनंत हो गए,
हाँ वो तो अनंत होगी। अब देखो ये तो हो गया ना, प्रयोग हुआ, समुदान हुआ, अधक कर्म हुआ। अब उसके बाद इरिया पथ में तो उसमें भी प्रदेशार्थता अनंत ली,
क्योंकि कर्मों की संख्या नंबर ऑफ कर्म,
प्रदेशार्थता अनंत ली थी। और फिर क्योंकि वहां पर भी कर्म प्रदेशों का ही ग्रहण करना है। अधक कर्म की तो हमने देख ली, अब तप कर्म की बात है 94 पर। एरिया पथ कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता तो संख्यात ही है। तप कर्म में महाव्रतधारी लेना है, एरिया पथ में तो 11 12 13 वाले लेना है। तो मनुष्यों में भी यही बात होगी, एरिया पथ के लिए तप कर्म के लिए जो ओघ में है वो मनुष्यों की अपेक्षा होती है, इसलिए मनुष्यों में ये बात घटित होगी संख्यात और वो। और क्रिया कर्म भी मनुष्यों में तो संख्यात ही होगी, और उसमें उसके एक एक लोक से गुणा करेंगे तो प्रदेशार्थता हो जाती है,
संख्यात लोक।
ये समझ में आती बात? थोड़ा बार बार उसको रेफर करना पड़ेगा किसको क्या कहना है। अभी आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर अपना 96, नीचे से 5 पांचवी लाइन, इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए। मनुष्यों में क्या कहा था, प्रयोग कर्म और समवदान हमने असंख्यात देखे थे, अब मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में संख्यात कहना पड़ेगा। इतनी विशेषता है कि प्रयोग कर्म और समवदान कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है तथा प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता संख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि एक जीव का एक लोक तो संख्या जीवों के संख्यात लोक, और समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है क्योंकि संख्यात अंकों से एक जीव के प्रति प्राप्त कर्म प्रदेशों को गुणित करने पर, एक गणित हुआ, गुणित लिखो, देखो एक जीव की भी प्रदेशार्थता अनंत है तो संख्या जीवों की भी अनंत होगी, तो करने पर समवदान कर्म की प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। मनुष्य अपर्याप्तकों का भंग पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों के समान है। अभी पेज पलटे बिना मनुष्य अपर्याप्तों में कौन कौन से कर्म हो गए पहले पहले ये नक्की करो।
प्रयोग कर्म,
शांति रखो, हाँ प्रयोग कर्म, हाँ समवदान कर्म,
क्रिया कर्म होगा,
लब्धि अपर्याप्त लेना। जब मनुष्यों में जब अपर्याप्त अवस्था देखते हैं तो लब्धि अपर्याप्त की ही होती है, क्योंकि वो गति मार्गणा का भेद है, क्रिया कर्म नहीं होगा। क्या होगा, अरे अधक,
अधक कर्म होगा।
और क्या होगा,
तप, वीर्यापत नहीं होगा।
कुछ नहीं हो ना, इस तीन ही हो गए, हाँ प्रयोग कर्म, समवदान और अधक कर्म, समझ में आई बात। अब ये तो जीवों की संख्या असंख्यात है, तो प्रदेशार्थता में जहाँ जीवों के प्रदेशों के गुणा करना है तो लोक से गुणा करो, असंख्यात इंटू लोक तो असंख्यात लोक हो गए, और समवदान में तो कर्म परमाणु, और अधक कर्म में भी परमाणु की संख्या, अनंत अनंत हो गए। अब आगे बढ़ते पेज नंबर 97 पर, पंचेंद्रिय द्विक का कथन सामान्य मनुष्यों के समान है। क्या कहते हैं, पंचेंद्रिय द्विक कहने से पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, इतनी विशेषता है कि इनमें क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कथन ओग के समान है, क्योंकि हम पंचेंद्रिय कहने से चारों गति के आ गए तो उसमें समय दृष्टि तो पल्ले के असंख्यात विभाग हो गए, इसलिए उसकी संख्या असंख्यात कहेंगे। यहाँ प्रयोग कर्म आदि पदों की प्रदेशार्थता का गुणकार जानकर कहना चाहिए, क्योंकि प्रयोग कर्म में देखो ये पंचेंद्रिय कहने से सारे पंचेंद्रिय जीव आ गए जो असंख्यात हो गए, तो वहां हमने जो मनुष्यों के लिए जगत श्रेणी का असंख्यात भाग लेंगे, और यहाँ जहाँ प्रतर का असंख्यात भाग होगा, इसलिए वो गुणकार जानकर कहना चाहिए कहते। इसी प्रकार त्रसद्विक यानी त्रस पर्याप्त और त्रस और त्रस पर्याप्त, हमने पर्याप्त पर्याप्त लिखे थे लास्ट टाइम, पर जब हम मार्गणा में देखते तो पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त कहने की पद्धति है, सामान्य और
पर्याप्त,
हमने लास्ट टाइम पर्याप्त पर्याप्त लिखा है वहां पर। हाँ पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, क्योंकि मार्गणा का भेद है ना, वो पंचेंद्रिय में पर्याप्त पर्याप्त दोनों मिलकर होते हैं। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त, वैसे त्रस और त्रस पर्याप्त। सामान्य देखो वहां पंचेंद्रिय पर्याप्त कहने पर भी असंख्यात होता है, सामान्य मनुष्यों में जो मनुष्य पर्याप्त कहने पर संख्यात होता था, ये विशेषता यहाँ की। देखो दूसरी लाइन लास्ट, वो जानकर तीसरी लाइन में पढ़ेंगे। इसी प्रकार त्रसद्विक पांच मनोयोगी पांच वचन योगी, अब इनकी भी संख्या है ना असंख्यात, और ये भी पंचेंद्रिय जीव है, स्त्री वेदी पुरुष वेदी, स्त्री पुरुष वेदी भी पंचेंद्रियों में ही हो गए, आभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी चक्षुदर्शनी, देखो नपुंसक वेदी छोड़े क्योंकि उनकी संख्या अनंत होती है। अचक्षु दर्शनी कहने से सभी जीव आ गए बारहवें गुण स्थान तक, वो भी अनंत हो जाएंगे, इसलिए उसको भी छोड़ा है। अवधि दर्शनी, पीत लेशा वाले, पद्म लेशा वाले, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि। अब जब पीत और पद्म कहेंगे तो उसमें वो इरियापथ वाली बात नहीं होगी, जहां जो लागू होता है उसको समझना। वेदक सम्यक दृष्टि, अब वेदक सम्यक दृष्टि कहेंगे तो इरियापथ वाला नहीं होगा। उपशम सम्यक दृष्टि, और संगी जीवों के जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि अपने अपने पदों और प्रदेशार्थता के गुणकार जानकर कथन करना चाहिए। उनकी संख्या जो जो जहाँ योग्य होगी वहाँ, क्योंकि जब हम मनोयोगी कहेंगे तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, और उसमें अवधि दर्शन या अवधि ज्ञानी कहेंगे तो उनकी संख्या लिमिटेड होगी। अब देवगति में ये देखना है कि किसको कौन से पद होते हैं, बताएंगे अश्विन भैया फटाफट।
अच्छा,
देखो देखो, त्रस द्विक में तो सभी पद हो गए,
सभी हो गए।
मनोयोगी वचन योगी में क्या क्या हो गए, क्या नहीं हो गए?
नहीं होगा, नहीं रहा पद
होगा,
सभी छह पद हो जाएंगे।
देखो ग्यारहवे बारहवें को भी है, और तेरहवे में भी वचन योग वो तो है ही वहाँ पर। अच्छा, अभी स्त्री पुरुष वेदी में
सभी पद होंगे।
एरिया पद कैसे होगा?
एरिया पद नहीं होगा,
हाँ, क्योंकि अपगत वेदी हो जाते हैं। हाँ, अभिनिगो बोधि ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी अवधि ज्ञानी, इसमें भी वो
सभी पद हो जाएंगे ना।
हाँ, सभी पद होंगे क्योंकि ग्यारहवें बारहवें इसमें इंक्लूडेड है ना, इसलिए एरिया पद भी होगा। चक्षु दर्शनी में भी
सभी पद
वो होंगे, सभी अवधि दर्शनी में भी होगी। पीत लेशा वाले, पद्मलेशा, अभी ये सातवें ही गुणस्थान तक है, एरिया पथ नहीं होगा। शुक्ल लेशा वाले में
सभी पद हो गए,
सभी हो गए। समय दृष्टि में भी हो गए, क्षायिक में भी सभी हो गए।
वेदक में,
वेदक में एरिया पथ नहीं होगा, तब तो होगा ना, क्योंकि छठा सातवां गुणस्थान है। उपशम समय दृष्टि में
नहीं,
एरिया पर होगा ना, ग्यारहवा वाला है ना।
उपशम सम्यक दृष्टि में अधकर्म लेना है ना।
हाँ,
अधकर्म उपशम सम्यक दृष्टि
क्यों नहीं लेना? अरे औदारिक शरीर को लेना है क्या? उपशमिक समय दृष्टि को भी औदारिक शरीर तो है ना, नहीं समझे?
नहीं नहीं, समझ गया, खाली मरण नहीं है वो फिक्स में पूछ रहा था।
क्या 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 मरण का कहाँ संबंध है?
कर्म है,
निकालो उपशम समय दृष्टि की, जो हमने देखे ना सत सत प्ररूपणा में, हर एक में क्या क्या, कौन से मार्गणा में क्या क्या होता है हमने देखा था। पेज नंबर 92 पर पहला पैराग्राफ, जैसे मनुष्य गति में जो बताया है तो वैसे देखो नीचे से दूसरी लाइन है ना,
समय दृष्टि
भव्य समय दृष्टि, क्षायिक उपशम समय दृष्टि वगैरह वगैरह सबको लिए, उसमें वेदक को छोड़ा था क्योंकि वहाँ सबको मनुष्य के समान बताना था, बस इतना ही।
उपशम में छह पद हो जाएगा ना।
हाँ, छह पद हो गए क्योंकि ग्यारहवा गुणस्थान है ना वहाँ पर। हाँ, अब आना यहाँ पेज नंबर अपना 97 चल रहा है, संगी जीवों में, उसमें भी सभी पद। अब आगे बढ़ेंगे देवगति में, देवों में, अब देवों में क्या नहीं होगा? और अधकर्म, औदारिक शरीर भी नहीं है, है ना, और अधकर्म भी नहीं होगा। हाँ, यानी प्रयोग होगा, समवदान होगा और क्रिया होगा, है ना। देखो भवनवासी, वानव्यंतर और ज्योतिषियों से लेकर सौधर्म और ऐशान कल्प तक के देवों में वहाँ संभव पदों की द्रव्यार्थता, उनकी संख्या बताना, इसलिए देवों के भेद करके बताएंगे। सामान्य से कथन करना है तो ये तीन पद होते कहेंगे, और प्रदेशार्थता का कथन नारकियों के समान है। सनत कुमार से लेकर अपराजित तक के देवों में वहाँ संभव पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कथन दूसरी पृथ्वी के समान है। वो तो श्रेणी का असंख्यात्वा भाग बताया था, और ऊपर प्रतर का असंख्यात्वा भाग बताया था। वैकृत कायोगी और वैकृत मिश्र कायोगियों का कथन देवों के समान है। उसमें भी प्रयोग समुवादान और क्रिया कर्म बताया है। सर्वार्थ सिद्धि में वहाँ क्या होगी बात, विशिष्ट बात, वहाँ संख्यात जीव होते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि में सब पदों का कथन मनुष्य पर्याप्तकों के समान है, उसका अर्थ वो संख्यात हो गए। सब पदों का कथन है ना, उसमें लागू है वो पद, तीन ही पद, नहीं तो मनुष्यों के पद नहीं यहाँ लेना, संख्या मनुष्यों के समान है
जो दो पद
और पद उसके जो अपने है वो तीन पद, सब पद है ना तीन पद, नहीं तो आप कहेंगे मनुष्यों में तो छह पद है इसमें, ऐसा नहीं लेना। अब ये होगी गति मार्गणा। दूसरी मार्गणा का नाम क्या है मनीषा बिन? इंद्रिय मार्गणा। तो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्द्रिय, पंचेन्द्रिय भेद होते। अभी यहाँ देखते, इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एक इंद्रियों में सब पद अनंत है। एक इंद्रियों में कौन कौन से पद है? प्रयोग, समवदान, अधकर्म। देवों में क्रिया लिया था वो तीन थे और यहाँ अधकर्म से तीन हो गए, तो यहाँ पर भी तीन पद हो गए। तो सब पद है तीन पद अनंत है। इसी प्रकार यानी उसकी द्रव्यार्थता प्रदेशार्थता सब अभी यानी अलग अलग देखने की जरूरत नहीं, सब अनंत कह देंगे। सब एक इंद्रिय, सब वनस्पति कायिक, यानी अभी तो एक इंद्रियों में सब पद अनंत बताया। सब एक इंद्रिय का अर्थ क्या होता है? एक इंद्रिय पर्याप्त, एक इंद्रिय पर्याप्त, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, फिर बादर के पर्याप्त, पर्याप्त सूक्ष्म के पर्याप्त, यानी सब में वो अनंत होते, बस इतना है। इसी प्रकार सब एक इंद्रिय, यानी एक इंद्रियों के जो भेद है उसमें भी यही कथन लागू होगा। सब वनस्पति कायिक, मति अज्ञानी, सब वनस्पति कायिक में पहले में पहले निगोद की अपेक्षा अनंत लेना है। प्रत्येक शरीर वाले जो हो गए उसकी बात अलग होगी। हाँ, मति अज्ञान, जिसमें जिसमें जिस भेदों में निगोद है उसको लेना, यानी बादर निगोद, सूक्ष्म निगोद, पर्याप्त निगोद, अपर्याप्त, वो सब। यानी वनस्पति कायिक कहने से जहाँ निगोद होते हैं, यानी सामान्य से वनस्पति कायिक हो गए तो वहां आते ही आते हैं, क्योंकि तभी उसकी संख्या अनंत होगी। मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, अभव्य सिद्धिक, ये अलग अलग मार्गणाओं की अपेक्षा जीव वही के वही है परंतु मार्गणा का भेद की अपेक्षा ये नाम बताए। मिथ्या दृष्टि और असंगियों के कहना चाहिए, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीवों का भंग बादर पृथ्वी कायिक जीवों के समान है, वो तो असंख्यात होगा। ख्याल में आती बात ये? यानी उनकी संख्या असंख्यात में है। विभंग ज्ञानियों का कथन देवों के समान है, क्योंकि विभंग ज्ञानी तो भले चारों गति में होते हैं परंतु देवों के समान है, पर देवों में अधक कर्म नहीं था तो विभंग ज्ञानी में अधक कर्म होगा कि नहीं होगा? मनुष्य तिरियंचों में भी तो विभंग ज्ञान होता है, नहीं ना? तो विभंग ज्ञानियों का कथन देवों के समान है, इतनी विशेषता है कि इनके क्रिया कर्म नहीं होता। देवों के समान ने देवों के समान पद नहीं लेना है, देवों के समान उनकी संख्या लेनी है। इनके क्रियाकर्म नहीं होता और उनकी जो संख्या होगी अधक कर्म वालों की वो भी असंख्यात होगी, क्योंकि तिरियंचों की प्रधानता से उनको असंख्यात कहेंगे। निकालो वो विभंग ज्ञानियों में, देख लो विभंग ज्ञानियों के पद देख लो। अभी हमने 92 पेज पर देखा था ना, तिरियंच गति के समान बताया था विभंग ज्ञानी, यानी वो सब असंख्यात होते हैं, बस इतनी बात बतानी है। पेज नंबर 91 पर है, नीचे से तीसरी लाइन देखो, विभंग ज्ञानी वगैरह जो है ना, बाकी जो लिस्ट है वहां पर तिर्यंच पर्याप्तों के समान भंग है। क्या उनके प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म होते, अन्य नहीं होते। तो विभंग ज्ञानी में तीन पद कौन से हो गए?
प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म।
हाँ, अधक कर्म। अभी आना अपने पेज पर। पर जब देवों के समान कहते, देवों में क्रिया कर्म था, इनमें नहीं है। यहाँ लिखा ना, इतनी विशेषता है कि इनके क्रिया कर्म नहीं होता है, परंतु अधक कर्म होता है। उनकी संख्या तो असंख्यात होगी। अब आगे, आहारक कायोगी और आहारक मिश्र कायोगी जीवों के, ये मुनिराज है। तो आहारक कायोग में जो है मुनिराज भले करोड़ों में है, परंतु आहारक कायोग वाले संख्यात होंगे ना, फिर भी कथन तो संख्यात ही कहेंगे। आहारक कायोगी मिश्र वाले जीवों के, जोवों के व जीवों के, जी बराबर करना, हाँ, प्रयोग कर्म, तप कर्म और क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है, और प्रदेशार्थता संख्यात लोक प्रमाण है। फिर से प्रयोग कर्म ने योग, योग की बात है वहां पर, यानी उनकी आहार का योग वाले जीव कितने हैं, तो संख्यात है। तो प्रयोग कर्म, तप कर्म और क्रिया कर्म में जीवों की संख्या लेते हैं। समवदान कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है, उसमें भी जीवों की संख्या लेते हैं, पर प्रदेशार्थतमा कर्मों की संख्या लेते हैं, और उसकी प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि संख्यात रूपों से एक जीव के कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर उसकी प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है, तथा अधक कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता। देखो, अधक कर्म में द्रव्यार्थता में क्या जीवों की संख्या नहीं लेते, वहां तो स्कंदों के लिए, यानी वर्गणा के स्कंद, तो दोनों ही अनंत हो गए, द्रव्यार्थता भी अनंत और प्रदेशार्थता भी अनंत, क्योंकि अधक कर्म की द्रव्यार्थता में वो नौ कर्म के स्कंद लेते हैं, यानी औदारिक शरीर के। पेज नंबर 98 पर आना। इसी प्रकार जैसे आहारक और आहारक कायोगी में देखा, ऐसा ही संयत, क्योंकि संख्यात ये बात उनमें भी लागू होती है ना, और उनके भी वैसे ही सारे है, केवल वो संयत कहने से इरियापद भी होगा। तो संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और संयता संयत जीवों का कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है, अपने अपने पदों का प्रमाण जानकर कहना चाहिए कि कौन कौन से पद होते हैं वो जानकर। तो संयतों में कौन कौन से पद हो गए, मनीषा बेन आप कहेंगे, संयतों के पद यानी कौन कौन से कर्म हो गए, प्रयोग कर्म होगा कि नहीं होगा, होगा समवदान, अधक कर्म होगा क्योंकि औदारिक शरीर वाले हैं ना, फिर कौन सा हुआ, तप कर्म
होगा,
तप कर्म नहीं है, अरे संयतों के ही होता है तप कर्म है,
क्रिया कर्म है,
क्रिया कर्म तो है ही, और इरियापद भी संयत कहने से छठे से चौदहवें तक सब आ गए। परंतु आगे जो हमने देखे थे, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि, उसमें इरियापद वाला नहीं होगा। हाँ, सभी में, आगे के सभी
संहिता सहित में अलग होता
है, और संहिता सहित में तप कर्म नहीं होता, बाकी सब। अपगत वेदियों में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, इरियापथ कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है, ये तो समझा इसी बात है। प्रयोग कर्म और तप कर्म की प्रदेशार्थता संख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि प्रयोग कर्म और तप कर्म में जीवों के प्रदेशों से गुणित करना है, उसको प्रदेशार्थता कहा है। और समवदान कर्म और ईर्यापद कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है, वहाँ कर्म परमाणुओं की संख्या को लेना है, तथा अधक कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता अनंत है। अधक कर्म के यानी द्रव्यार्थता यानी नो कर्म स्कंद, अभी ये ख्याल में रखना, आहार वर्गणा के स्कंद लेना, और प्रदेशार्थ में उसके नंबर ऑफ परमाणु लेना। बारंबार पढ़ने से वो याद रहेगा अपने को। अधक कर्म नहीं, औदारिक शरीर के नौकर्म ने औदारिक का ही नौकर्म स्कंद, क्योंकि वो वैकरिक शरीर में लागू होता ही नहीं है, औदारिक शरीर का नौकर्म स्कंद। हाँ हाँ हाँ, यानी वो दोनों अनंत हो गए उसके। इसी प्रकार जैसे अपगत वेदियों में ये सब लगाए हमने, एक दो तीन चार, और ये अधकर्म भी लगाया है ऐसा। इसी प्रकार अकषायी केवल ज्ञानी यथाख्यात विहार शुद्धि संयत और केवल दर्शनियों का भी कथन करना चाहिए। नपुसक वेदियों का कथन अचक्षु दर्शन वालों के समान है, इतनी विशेषता है कि यहाँ ईर्यापत कर्म नहीं होता। हाँ, क्योंकि अपगत वेदी जो है श्रेणी वाले हैं, और क्रियाकर्म छठे सातवे छठे तक होगा। हमने सूक्ष्म सांप्राय में भी छोड़ा था ना क्रियाकर्म को, यहाँ पर भी वो जो ऊपर हमने जो कहा ना सब में ऐसा ही है, तो इसमें क्रियाकर्म नहीं होगा सूक्ष्म सांप्राय में। और ईर्या पद भी नहीं था, बराबर है कि अश्विन भाई?
बराबर।
अभी आगे देखते हैं, यानी यहाँ पर भी जो केवल ज्ञानी है यथाख्यात विहार, उनमें क्रियाकर्म नहीं होगा। और नपुसक वेदियों का कथन अचक्षु दर्शन वालों के समान है, क्योंकि उनकी संख्या अनंत है। परंतु कोई भी वेद वाला क्यों न हो, वेद वाले हैं तो उनके ईर्यापथ वाली बात नहीं, इतनी विशेषता है कि यहाँ ईर्यापथ कर्म नहीं होता। अचक्षु दर्शन वालों को होगा क्योंकि ग्यारहवें बारहवें गुण स्थान में है, पर वहां तो वेद का उदय नहीं है, इसलिए नपुंसक वेदी को अचक्षु दर्शन के समान कहना है, वो उसकी केवल संख्या की अपेक्षा कहना था। इसी प्रकार क्रोधादि चार कषाय वालों का कथन करना चाहिए, यानी उनके चार कषाय वालों को भी वो ईर्यापथ वाला नहीं होगा। मन पर्याय पयर ये हुआ, पर्याय करना, पहले यह के ऊपर रफार चाहिए। मन पर्य ज्ञानियों का कथन संयतों के समान है। इस प्रकार प्रकर हुआ प्रकार द्रव्य प्रमाणानुगम का कथन समाप्त हुआ। संख्या बताई, सत संख्या, अब क्या बताएंगे?
क्षेत्र,
क्षेत्र बताएंगे, कितने क्षेत्र में रहते हैं वो जीव, ये बात होगी। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ से वो ध दिखता है, ओघ से प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है, पहले हमने वो अनंत है वो देखा था, अब यहाँ क्षेत्र को बताना है, तो कहते सब लोक क्षेत्र है, क्योंकि एकेंद्रियों के भी ये तीन तो होते ही हैं। ईर्यापथ कर्म और तपक कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है, तो लोक का संख्यात्वा भाग, ईर्यापथ में तो जो दंड में लोक का संख्यात्वा भाग होगा केवली समुद्रात में, असंख्यात बहुभाग प्रतर में होगा, और सब लोग क्षेत्र है। हाँ लोक पूरण में सब लोग हैं। अब तप कर्म में कैसा लिया उन्होंने, क्योंकि केवली के भी तप कर्म स्वीकार है ना। देखो 92 निकालना, नहीं तो ये पूरा घटित नहीं होगा। नाइन्टी टू पेज पर यथाख्यात विहर शुद्धि संयतों के समान है ना केवली के, और ये ऊपर बताई थी इन्हें आहार कायोग और अहनि मिश्र कायोग में ओक के समान कर्म होते हैं, परंतु बताया था इरियापथ नहीं होता। अब सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात में ओक के समान है, क्रिया कर्म नहीं होता बताया था, इन्हें तप कर्म वहां है। और अपगत वेदी अकषाय केवल ज्ञानी वगैरह वगैरह यथाख्यात विहार शुद्धि संयत जीवों के समान है, यानी वहां तप कर्म को स्वीकार है। तो यहाँ जो ये तीन बातें केवली समुद्घात में बताए हैं, तो उनके तप कर्म भी है और इरियापत भी है, क्रिया कर्म उनके नहीं है, ये बात है। समझ में आती बात ये पूरा, यानी तीन भेद कैसे बताए, कि केवली समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग और पूरा लोक। क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता, क्रिया कर्म कहने से समय दृष्टि लेना है, और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है, लोक का असंख्यात वा भाग क्षेत्र है। यह स्पर्शन की बात नहीं है, स्पर्शन पूछते तो क्या कहते हैं क्रिया कर्म का। हाँ बोलो अश्विन भाई, क्रिया कर्म का कितना होगा?
नहीं बात आठ नहीं, नहीं 14 राजू हो जाएगा ना क्रिया कर्म की, क्योंकि वहाँ पे मरण था, मरण से 8 राजू नहीं 9 राजू तक हो जाएगा ना।
कैसे 9 राजू? क्रिया कर्म समय दृष्टि के होता है।
हाँ, तो मरण की अपेक्षा हो
कहाँ जाएगा,
देव में ऊपर तक जाएगा और तीसरे नरक से जाएगा।
ऊपर तक जाएगा तो मनुष्य ऊपर तक जाएगा, तीरियंच तो जाएगा तो सोलवे स्वर्ग तक ही जाएंगे।
हाँ, तो
और देव आए तो वहां से आएंगे और नीचे नीचे तक जाएंगे तो 8/14 ही होगा। मैंने अभी पढ़ा नहीं है,
8/14 हो
जाएगा उनका जो विहार का है, उतना ही लेना पड़ेगा। बाकी अपना अपना स्वस्थान की अपेक्षा तो उनका लोक का संख्या तो अभाग होगा। अभी हम क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। तो कहते क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है, लोक का असंख्यात वा भाग क्षेत्र है ना।
ये क्रिया कर्म में भी लोक का असंख्यात वा भाग ही लिया। अच्छा, ये क्षेत्र की बात,
यहाँ संख्या नहीं लेना है। जो कि देखो प्रदेशार्थता हमने जीव के प्रदेशों से गुणा करते थे, पर यहाँ वो कितने क्षेत्र में रहते हैं वह सूचना लेना है।
खाली क्षेत्र
उसके भले वो लोग या असंख्यात लोग उसके जीव के प्रदेश हो गए, पर वो असंख्यात लोग कितने क्षेत्र में रह रहे हैं, क्योंकि पूरे असंख्यात जीव जहाँ रह रहे हैं वही उनके प्रदेशार्थता का क्षेत्र होगा। समझ में आती है ना बात? यहाँ जो जीवों का जो क्षेत्र है, उनके प्रदेश जहाँ जीव है वही उनके प्रदेश है। परंतु इरियापथ में क्या है, जीव भले संख्यात है पर उसका क्षेत्र जो है वो पूरा लोक हो सकता है, है ना? अब हम नीचे से चौथी लाइन पढ़ेंगे। इसी प्रकार कायोगी और भव्यों के भी कथन करना चाहिए, कैसा होगा, ओक के समान। क्या होगा कि उसमें प्रयोग कर्म समाधान अधकर्म पूरा लोक है, कायोगी की अपेक्षा इरियापद तप कर्म वो लोक का असंख्यात भाग, यानी तीन केवली समुद्घात के तीन विकल्प, और कायोगियों में और भव्यों में क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता प्रदेशार्थता लोक का असंख्यात, ये सब जैसा ओघ का कथन है वैसा ही कायोगी और भव्यों में होगा। इसी प्रकार औदारिक कायोगी, औदारिक मिश्र कायोगी,
ये भवे में अलग हो जाएगा ना कि कत्ल पूरा लोग भी ले सकते हैं ना, हिरियापत का और उसका,
क्या क्या
भव्यों में हिरियापत का
हाँ
पूरा लोक हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे कोई योग की अपेक्षा नहीं है।
मैं फिर से आपका प्रश्न क्या है?
भव्यों में हिरियापत का पूरा लोक ले सकते हैं ना?
लिया ही है कि देखो ओघ के समान का अर्थ क्या है?
हाँ, पूरा लोक हो जाएगा
वो असंख्यात भाग असंख्यात बहुभाग पूरा लोक तीनों आ गए। इरियापद तो भव्यों में तो जो केवली के होगा वही उनके होगा ना। हाँ इसी प्रकार औदारिक काय योगी, तो औदारिक काय योगी में इरियापद में पूरा लोक होगा क्या?
नहीं।
तप कर्म
नहीं होगा।
औदारिक मिश्र में भी पूरा लोक कहाँ होगा? कपाट समुदायत में कितना होगा?
असंख्यात बहुभाग।
असंख्यात बहुभाग कैसा हुआ?
नहीं, लोक का असंख्यात बहुभाग
क्योंकि देखो कपाट समुद्रघात में जो उसकी एरिया कितनी होती है ऐसे मान ले ना, 36 अंगुल मैक्सिमम। हाँ पेज नंबर 98 है।
चौदह राजू तुम्हें
देखो अभी क्या विषय चल रहा है, आप तीसरी पुस्तक में आई नहीं आई थी ना क्या? नहीं आई थी, आई थी। हाँ ये नहीं मैंने, हाँ छह प्रकार के कर्म है, प्रयोग कर्म वगैरह उसकी बात मालूम है। अच्छा अभी उनमें पहले हमने कौन से मार्गणा में कौन कौन से कर्म होते वो बात देखी। छह की बात है, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, तप कर्म, क्रिया कर्म और इरियापद। इनमें कौन से ओघ में कौन कौन से होते हैं और मार्गणा में किसके कौन से होते वो बात देखी। उनमें फिर हमने संख्या देखी, संख्या में द्रव्यार्थता भी देखना है, प्रदेशार्थता भी देखना है। द्रव्यार्थता में प्रयोग कर्म में और समवदान में तप में भी जीवों की संख्या लेनी है, इरियापथ में भी संख्या ही लेनी है। प्रदेशार्थता अलग अलग है, प्रयोग कर्म में कहो तप कर्म में जो है वो प्रदेश यानी जीव के प्रदेशों की संख्या है। समवदान में वो प्रदेशार्थता में कर्मों को लेना है, अधक कर्म में भी और समवदान में भी है ना, वो अनंत हो जाता है भले एक जीव हो गया अनेक जीव हो, इस तरह से हमको सोचना है। ये तो हमने देख लिया है, आप अभी आई ना इसलिए सब मैंने रिपीट कर दिया। अब यहाँ हम संख्या के बाद हम क्षेत्र देख रहे थे। क्षेत्र का अर्थ है तो वो जीव कितने क्षेत्र ऑक्युपाई करते हैं, तो ओक की अपेक्षा हमने देखे थे। प्रयोग कर्म ने सारे एक केंद्रियों में भी होगा, एक केंद्रियों में जो जो होता है तो पूरा लोक तो ले ही लेते, तो प्रयोग में भी और समवदान में और अधक कर्म में भी पूरा लोक ले लेना। अब उसके प्रदेशार्थता कहो या जीवों की संख्या होगा, जो जीवों का क्षेत्र है वही उनके प्रदेशों का क्षेत्र है। ऐसे ही समवदान में भी जो अनंत भी भले कहे, तो फिर एक जीव के लिए अगर प्रदेश अनंत होते तो जीव लोक के असंख्यात विभाग रहते हैं, तो प्रदेश भी असंख्यात विभाग ही रहेंगे। इस तरह क्षेत्र में हमको जरा ख्याल रखना, इतना ही है। जहाँ इरियापथ कर्म और तप कर्म है केवली के भी होता है, और वो तो लोक का असंख्यातवा भाग, लोक का बहुभाग और पूरा लोक, इस तरह से तीन विकल्प उसमें होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, अब नीचे से तीसरी लाइन वहां से पढ़ते हैं। इसी प्रकार औदारिक काय योगी, देखो देखो कपाट की एरिया, कपाट की एरिया कैसे निकालनी है, तो जीवों का जो डायमीटर जो है ना 12 अंगुल या 36 अंगुल मैक्सिमम जो पद्मासनस्थ है उनको स्वीकार किया गया, तो ऐसा 36 अंगुल उसकी विड्थ है और ऐसा कितना फैला है, मैक्सिमम हम दक्षिणोत्तर फैला है देखते हैं ना 7 राजू और हाइट 14 राजू, कुछ कम यानी 14 राजू गिनते हैं, तो एक हाइट है 14 राजू, एक बाजू है 7 राजू, तो कितना होगा 14 राजू यानी 2 × 7 राजू, 2 × 7 राजू, तो 7 राजू इंटू 7 राजू जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय 2 जगत प्रतर हुए, 2 जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय उसकी तीसरी डायमेंशन
जो शरीर प्रमाण है।
हाँ ख्याल में आते हैं ना, यानी पूरा लोक तो नहीं होगा, तो लोक का असंख्यात भाग होगा वो भी। तो कहते इसी प्रकार औदारिक काय योगी, यानी औदारिक काय योगी में देखो ये जो असंख्यात बहुभाग
नहीं होता
और पूरा लोक
मिश्र
ये औदारिक काय योगी के होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा,
नहीं होगा, क्योंकि तब वो कारमान का योग है, ख्याल में? प्रतर लोक पूर्ण और प्रतर में कारमान का योग है, इसलिए औदारिक काय योग के रहते हुए पूरा लोक नहीं होगा, ये कहना चाहते। औदारिक मिश्र काय योगी में भी लोक का असंख्यात भाग घटित होगा, पूरा लोक
औदारिक मिश्र
नहीं, नहीं औदारिक मिश्र में तो नहीं, नहीं औदारिक मिश्र पूरा लोक होगा ना, वो केवली के अपेक्षा वो इरापथ नहीं लेना है।
अच्छा ये एकेंद्रीय की अपेक्षा,
एकेंद्रीय है तो पूरे लोक में है कि नहीं? वो केवली वाला वो उसमें पद
नहीं है,
उस पद की अपेक्षा पूरा लोक नहीं होगा। देखो अभी यहाँ क्या क्या सोचना है, औदारिक काय योगी वाले को
पूरा लोक लेना है सभी में।
फिर से सुना, औदारिक काय योग में कौन कौन से पद होते पहले ये सोचो।
औदारिक काय योग
प्रयोग कर्म होगा, समवदान होगा, अध कर्म होगा, तप कर्म होगा, क्रिया कर्म होगा और इरियापथ
कर्म भी होगा,
होगा
होगा।
ग्यारहवें बारहवें वाले को होगा ना, और तेरहवें वालों को इरियापथ का आप कब कहेंगे? देखो देखो कारमान होगा केवली समुद्धात अवस्था में, पर इरियापद के रहते हुए अपने संख्यात जीव अपने लोक के असंख्यात विभाग में है कि नहीं? देखो क्षेत्र है, अभी संख्या की बात केवल वो अलग से सोचना, यानी उनको इरियापद कर्म है कि नहीं है पहले सोचो। है तो औदारिक काय योगी उनको जब इरियापद है तब उनका क्षेत्र कितना होगा?
लोक का संख्या
ये है,
तेरहवें गुण स्थान तक लेना पड़ेगा।
इरियापद है उनको पर लोक का संख्या तो, तपकर्म है परंतु वो केवली का जो पूरा लोक या संख्या वो वाली उसमें नहीं, वो क्षेत्र का वो विकल्प नहीं है, पर इरियापथ भी है और तपकर्म भी है उनके। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो फिर से पढ़ते हैं इसको। इसी प्रकार औदारिक काय योगी ये इसी प्रकार किसके लिए? ओग के समान, इसी प्रकार वो ओग के समान वाली बात लेना। ओगो के समान क्या होगा कि प्रयोग समवदान अधक कर्म की वो कितना क्षेत्र है? तो पूरा लोक है, ये उसका ओग के समान हुआ। किस किस में? औदारिक काय योगियों में भी। औदारिक मिश्र काय योगी वो सारे लब्धिया पर्याप्त भी पूरे है ना, वो भले पर्याप्त भी जीवों के शुरुआत में तो औदारिक मिश्र होता है, तो पूरे लोक में फैले हुए एक सूक्ष्म केंद्रीय, तो औदारिक मिश्र काय योगी भी पूरे लोक में पाए जाते हैं,
खाली उसमें इरियापथ का क्षेत्र अलग हो जाएगा।
वही तो, वो तो इतनी विशेषता है कि बाद में बताएं, पहले ओक के समान क्या है वो बात देखते हैं। यानी उसमें प्रयोग समवदान अधक कर्म की तो पूरा लोक होती है, वो बात यहाँ देखते हैं। नपुंसक वेद वाले भी पूरे लोक में हैं, चारों कषाय वाले भी और चक्षु दर्शन वाले आहारकों के भी कथन करना चाहिए। अब यहाँ देखते इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओं में केवली जिनों का भंग नहीं पाया जाता। कौन सा भंग? लोक का पूरा, हाँ इरियापद पाया जाता है, लोक का असंख्यात बहुभाग और लोक पूरा लोक, ये दो भंग नहीं पाए जाते।
और यहाँ पे नपुंसक वेद और
नपुंसक, अभी जिसके जिसमें जो जो है वो समझ लेना,
इरियापद कर देना,
क्योंकि वो इरियापद वाला अचक्ष दर्शन वालों को मिलेगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा? ग्यारहवें बारहवें वाले को भी हमने कुछ कंसीडर करना है। नपुंसक वालों में तो इरियापथ होता ही नहीं है,
होता है।
पर जहाँ होता है वो पूरा लोक नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। लोक का असंख्यात बहुभाग, केवली जिनों का भंग है ने लोक का असंख्यात बहुभाग और पूरा लोक। ये भंग नहीं होगा। अब कारमण का योग वालों के इसी प्रकार कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें इरियापत कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है? तो कहते लोक का असंख्यात बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है। ये समझ में आई अभी? इसी प्रकार अनाहारकों के भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इर्यापत कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थ का कितना क्षेत्र है, लोक का असंख्यात बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है। आएगा ना, तो उसमें जो जो होता है वो सब आएंगे। देखो देखो क्या कहते हैं, नहीं नहीं देखो इसी प्रकार है योग के समान विशेषता क्या है वो बताएंगे फिर से। कर्मण का योग में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म पूरे लोक में हो गए, है ना। विशेषता क्या होगी कि कर्मण का योग में इर्यापत कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता का कितना है, तो वहां लोक का संख्या तो अभाग नहीं कहेंगे। केवली में कहा था, यहाँ क्या कहेंगे, असंख्यात बहुभाग और पूर्व, क्योंकि कर्मण का योग केवली में तीन समय के लिए है, वहां वो पहले दंड कपट उसमें नहीं लेना है, इसलिए ये कथन होगा। थोड़ा ज्यादा ज्यादा सोचना पड़ता है। कहते इसी प्रकार अनाहारकों के भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इर्यापत कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है, लोक का असंख्यात बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है। उससे भी इतनी विशेषता है कि इनके तप कर्म का लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण भी क्षेत्र है।
चौथे गुण स्थान वाले कर्मण का योग,
हाँ तप चौथे गुण स्थान वाले का कहा,
क्रिया कर्म
तप कर्म तो संयतों के होता है। क्योंकि अयोगी जिनकी अपेक्षा इनका क्षेत्र उपलब्ध होता है। देखो अनाहारक कहने से चौदहवा गुण स्थान भी आया, कर्मण का योग कहने से वो तेरहवें गुण स्थान के तीन समय आते हैं, वहां पर भी जीव अनाहारक है, पर इन एडिशन अनाहारक कहा, जहाँ कर्मण का योग नहीं है और जीव अनाहारक है, वो चौदहवा गुण स्थान पूरा, वो लोक का असंख्यात भाग है, इसलिए वहां पर लेना उसको। वहां इरियापद को नहीं लेना, तप को लेना केवल, यानी तप कर्म चौदहवें गुण स्थान तक स्वीकार है। आगे बढ़े, पहले ओग बताया और ओग के समान जो जो मार्गणा है उसमें जो विशेषता है उस सहित उनको बताया। इसमें कोई प्रश्न है तो फिर दोबारा पूछ लेना, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। मनीषा बहन कुछ ख्याल में आती है, नहीं थोड़ा थोड़ा देखो, पहले में पहले ओग की अपेक्षा, ओग कहेंगे तो सभी कर्म है, तो ओग में सभी कर्म है, परंतु पूरा लोक कौन कौन से कर्म में होगा, प्रयोग में होगा, समवदान में होगा, अधक कर्म में होगा, ईर्यापथ में भी, वो तो तीन हमने देखे कौन से, असंख्यात भाग, हाँ ईर्यापथ और तप कर्म दोनों लेना, क्योंकि केवली को भी तप कर्म स्वीकार किया है। अब यहाँ तो यहाँ तक बात हो गई, और कौन सा रह गया, नहीं 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 हमने प्रयोग, समवदान, अधक कर्म, ईर्यापथ, तप कर्म लिया, क्रिया कर्म, क्रिया कर्म कौन है, समय दृष्टि है, उनकी संख्या जो अपेक्षा वो लोक का संख्या तो भाग ही, उनके रहने का ठिकाना लेना है। अब यहाँ स्पर्शन वगैरह विहार उसकी बात यहाँ नहीं लेनी है, मारणांतिक एट ए टाइम एक समय में ले सकते हैं, परंतु वो भी लोक का संख्या तो भाग होगा, स्पर्शन में वो जो कैलकुलेट करना है वहां करेंगे।
तो चौदहवें गुण स्थान में हम लोग को खाली तप कर्म ही लेना है ना,
हाँ आपका प्रश्न है चौदहवें गुण स्थान में क्या क्या होगा, प्रयोग कर्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चौदहवा गुण स्थान कोई मार्गणा नहीं है, परंतु वो अलेशा वाला लेशा मार्गणा में अलेशा हम कह सकते हैं, ना यहाँ प्रयोग कर्म है, ना समवदान कर्म है, ना अधक कर्म है, क्योंकि परमाणु का ग्रहण नहीं है, परंतु उसका भी निर्जरा चल रही है वहां पर, क्योंकि निर्जरा को लेना कि नहीं लेना पता नहीं है, यानी अधक कर्म ने औदारिक शरीर के परमाणु फिर रहे है, ग्रहण नहीं है, फिर क्या है, इर्यापद भी नहीं है, तप कर्म है वहाँ पर,
तप कर्म है, खाली एक ही लेना पड़ेगा,
हाँ। और क्रिया कर्म भी नहीं है। तप कर्म ले रहा है ना, तप कर्म है वहां पर, चौदह क्यों नहीं लेना चाहिए? जो भगवान कह रहे हैं तो आप क्यों मना करते हैं? योग नहीं है फिर भी है वहां पर, तप है, स्वीकार किया। संयत कहेंगे कि नहीं उनको? हाँ हाँ, तो उनके वहां तप कर्म है। देखो वो जो कहते हैं उसके अनुसार हमको सोचना है, हमारी सोच के अनुसार उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने हैं। हाँ देखो अभी आदेश, ये तो हमने ओघ देखा और ओघ के समान जहां जहां थोड़े डिफरेंस के साथ जो मार्गणा होती है उसके बाद देखी। आदेश की अपेक्षा नरक गति में, अब नरक गति में पहले फिर से बताओ, अभी ब्रह्मा भी आई ना, कौन कौन से कर्म हो गए ब्रह्मा आप ही बताओ, तो आपको भी जरा रिवीजन हो जाएगी। नारकियों के हाँ क्या क्या होगा वो बताओ, प्रयोग होगा नारकियों में अधिक, समवदान होगा और कौन सा होगा, वहाँ सम्य दृष्टि है तो क्रिया कर्म होगा। पर नारकी अभी कहाँ रहते हैं, तो लोक के असंख्यात विभाग में, तो देखो नरक गति में नारकियों में सब पदों की, सब पद कहने से वो तीन पद है ना उसमें, वो हमें मालूम होना चाहिए बारंबार, इसलिए हम उसको रिविजन कर रहे हैं। प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और क्रिया कर्म है, उसकी द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का क्षेत्र पूछ रहे। द्रव्यार्थता कितनी है तो हमने असंख्यात देखी,
लोक का संख्या,
पर वो द्रव्यार्थता का क्षेत्र कितना है लोक का असंख्यात। इसी प्रकार सब नारकी, अब ये लोक का असंख्यात वा भाग, ये कथन कहाँ कहाँ लागू होता है, तो सब नारकी पंचेंद्रिय तीरियन चत्रिक, वो भले संख्या में असंख्यात हो गए और पंचेंद्रिय तीरियन चत्रिक कह दिया, इसलिए वो तप कर्म इरियापत कर्म की बात ही नहीं है। उसमें कौन कौन से हो गए पंचेंद्रिय तीरियन चत्रिक में, कौन कौन से कर्म हो गए बोलो तेजन,
कर्म होगा
कौन से हो गए, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, क्रिया कर्म है ना। तो कहते परंतु उनका क्षेत्र पंचेंद्रिय तीरियन चत्रिक का रहने का ठिकाना तीरियन चौंगा लोक का संख्या था भाग पंचेंद्रिय तीरियंच अपर्याप्त। अभी हाँ उसमें जो जो अपने अपने हैं क्रियाकर्म रहित तो, बाकी तीन हैं मनुष्य अपर्याप्त, इनके रहने के ठिकाने बस इतना ही लेना है। सब देव, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पहले तीरियंच पंचेंद्रिय तीरियंच अपर्याप्त कहा था या पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहा, त्रस अपर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल जर का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, वायु का एक में क्या लेना पड़ेगा
लोक का संख्या,
तो भाग वो तो बाद में बताएंगे अलग से शायद, क्योंकि बाकी जो अन्य अन्य जो है उनकी
लोक का संख्या हाँ। भाग
बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादर निवोद प्रतिष्ठित पर्याप्त, क्योंकि वो प्रत्येक शरीर वाले हैं ना, उनके आधार से निगोद है, वो अनंत है, पर वो प्रत्येक शरीर वाले जीव
असंख्यात
है, उनका रहने का ठिकाना लोक का असंख्यात भाग है। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैक्रिक का योगी, वैक्रिक मिश्र का योगी, आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, कोई संख्यात है कोई असंख्यात है, पर रहने का ठिकाना लोक का असंख्यात भाग। स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंग ज्ञानी, आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, वो धी बराबर कर, मन पर्य ज्ञानी, चक्षुदर्शनी, सॉरी मैं नीचे गई, मन पर्य ज्ञानी के बाद सामायिक संयत, छेदोपस्थापना शुद्धि संयत, संपत हुआ संयत करो, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, ये मार्गणाओं के नाम है ना अलग अलग, संयता संयत, चक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, पीतलेशक, पद्मलेशक, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, और संगी मार्गणा वाले जीवों के कहना चाहिए, अब जो डिफरेंस है वो बताएंगे। इतनी विशेषता है कि बादर वायु का एक पर्याप्तकों में सब पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का क्षेत्र लोक का संख्यात्वा भाग है, क्योंकि वायु का उनके रहने का तो लोक का संघ, क्योंकि पांच राज्यो घन राज्यों तक रहते हैं। तथा अधक कर्म का क्षेत्र सब मार्गणाओं में सब लोक प्रमाण पूरे लोक प्रमाण
अधकर्म का क्षेत्र द्रव्यार्थता की अपेक्षा तो
हाँ बोलो द्रव्यार्थता की अपेक्षा कितना होगा
लोक का संख्या तो नहीं लोक का संख्या तो नहीं एक मिनट द्रव्यार्थता की अपेक्षा असंख्यात लोग
आप ही बोलो पहले भी पहले
द्रव्यार्थता तो अधकर्म की अपेक्षा असंख्यात
देखो अधकर्म की द्रव्यार्थता इन्हें नौ कर्म के स्कंद जो अनंत है
अच्छा वो अनंत पे जाएगा सॉरी
नहीं नहीं स्कंद अनंत है परंतु उसका क्षेत्र कितना है इन्हें पूरे लोक में है ना वो स्कंद इस तरह से ले लेना उसके यहाँ लेकिन आधा कम्म सवो मगणासु सवो लोगेति वत्तव्यम अधक कर्म का क्षेत्र सब मार्गणाओं में सब लोक प्रमाण है ऐसा कहा कि सब मान्य जहां जहां अधक कर्म लागू होता है वहां सब मार्गणा इन्हें मनुष्य में भी भले मनुष्य कहते रहते कहां है तो लोग क्या संख्याते उनका अधक कर्म का क्षेत्र पूरा लोग कहेंगे
अच्छा वहां पे ये फर्क है
यही तो देखो ऐसा कहना चाहिए अभी आगे बढ़ेंगे हम इसलिए पहले बता दिया सब मार्गणाओं में तीर्यंच गति में पेज नंबर 100 तीर्यंचों में अपने अपने पदों का क्षेत्र ओग के समान है उसमें क्या क्या नहीं है हर तप कर्म नहीं तो कहते तीर्यंच कहने से सामान्य की बात है ना अपने अपने पदों का क्षेत्र ओग के समान है इसी प्रकार असंयत कृष्ण लेशा वाले नील लेशा वाले और कपोत लेशा वाले जीवों के भी कहना चाहिए यानी उसमें जो प्रयोग वगैरह के लिए समवधान के लिए तो पूरा लोग कहेंगे केवल क्रिया कर्म में वो लोग का संख्या तो अभाव कहेंगे कृष्ण लेशा वगैरह है ना और इसमें असंयतों में मनुष्य गति में मनुष्य यानी सामान्य मनुष्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियों में प्रयोग कर्म समवदान कर्म और ईर्या पथ कर्म थ लगाना और तप कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग लोक का असंख्यात बहुभाग और सब लोक है देखो प्रयोग कर्म में यानी जब वो केवल ज्ञानी की जो यानी केवली समुद्रात अवस्था में प्रयोग कर्म में योग है कि नहीं है तो कोई ना कोई तो है ही ना औदारिक मिश्र पहले था फिर कारमान का योग होगा तो प्रयोग कर्म है समवदान कर्म है कि नहीं है है ना तो वो भी लोग का असंख्यात्व भाव वगैरह वगैरह होगा ईर्यापथ कर्म वो भी उसमें तो तीन होते ही होते हैं तप कर्म वहां पर भी है इसलिए ये तीन विकल्प बताएं लोक का असंख्यात भाग लोक का असंख्यात बहुभाग और सब लोक अधक कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता क्षेत्र सब लोक है ये हमने पहले भी देखा था भले उनकी संख्या संख्यात होगी फिर भी अधक कर्म के सभी मार्गणाओं में पूरा लोक लिया है तथा क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता का और प्रदेशार्थता का क्षेत्र लोक का संख्यात्वा भाग है, मनुष्यों में सम्यक दृष्टि लेना है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय द्विक कौमा लगा लो, त्रस द्विक और शुक्ल लेशा वाले जीवों के सब पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का क्षेत्र जानना चाहिए। एक इंद्रियों में पंचेंद्रिय द्विक करते थे, पंचेंद्रिय कहने से पूरे चारों गति के जो, और पंचेंद्रिय पर्याप्त, उसमें भी चारों गति के आ गए। देखो पंचेंद्रिय कहने से सामान्य, पर्याप्त पर्याप्त मिलकर, और इस मार्गणा का दूसरा भेद है पंचेंद्रिय पर्याप्त, इतना। इन पर्याप्त कहने से वो पर्याप्त नाम कर्म वाले हो गए उसमें, क्योंकि उनकी संख्या में जो डिफरेंस है, उनमें जो कुछ विशेषताएं होती है, स्पेशली उनका जो काल जो है ना, काय स्थिति जिसको कहेंगे, उसमें डिफरेंस होता है। सामान्य पंचेंद्रियों का अलग है और पंचेंद्रिय पर्याप्तों का अलग है, त्रस का अलग है, त्रस पर्याप्तों का अलग है। त्रस पर्याप्त कहेंगे तो 2000 सागर, और त्रस कहेंगे केवल
शादी
तो पूर्व कोटि पृथक तो प्लस 2000 सागर, इस तरह से उसका भेद आता है। और वहां जो कोई अपर्याप्तों में लागू होगी बात, वो वहां पर भी लागू हो जाती है। अब एक इंद्रियों में सब पदों का क्षेत्र सब लोक है, क्योंकि एक इंद्रियों के रहने का ठिकाना ही पूरा लोक है। इसी प्रकार बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, बादर जल का एक अपर्याप्त, बादर अग्नि का एक अपर्याप्त, बादर कोमल वालो वायु का एक अपर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, बादर निगोद पर्याप्त, बादर निगोद अपर्याप्त, वे ही पांचों स्थावर कायिक तथा उनके सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त, दोनों अज्ञानी निमति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी अभव्य सिद्धिक मिथ्या दृष्टि और असंगियों के कहना चाहिए। ये बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त को भी लिया, इसमें
निगोद पर्याप्त को लिया,
हाँ
निगोद पर्याप्त को लिया,
निगोद को पर्याप्त को भी लिया, क्योंकि वो संख्या अनंत होती है ना उनकी, उस अपेक्षा से ये पूरा लोक हो जाता है। देखो प्रयोग कर्म है, समवदान है ना उनके, अधकर्म, अधकर्म तीन है। अपगत वेद वालों में सब पदों का, देखो ये बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त कहने से, क्योंकि सूक्ष्म तो पूरे लोक में है, यहाँ बादरों को भी पूरा लोक क्यों कहा?
बोलो
हाँ?
देखो बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्तों को पूरा लोक क्यों कहा?
वहाँ पे मारणांतिक लिया है,
मारणांतिक वर्तमान का मारणांतिक लिया, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी असंख्यात है, और वर्तमान वर्तमान में मारणांतिक कितना हो जाता है उनका, इसलिए उसको ले लिया। सूक्ष्म तो सब पूरे लोक में है तो हमें समझ ही सकते हैं, पर ये जो अपर्याप्त जीवों को भी पूरा लोक जो कहा है, उनकी संख्या इतनी अधिक है, क्योंकि बादर जीवों में पर्याप्तों से अपर्याप्त असंख्यात गुणे होते हैं, सूक्ष्मों में उल्टा है। आगे बढ़ेंगे। अपगत वेद वालों में सब पदों का, अपगत वेद वालों में कौन कौन से पद हैं? प्रयोग है, समवदान है, अपगत वेद वाले में अधक कर्म है कि नहीं है? है,
हाँ
छह कर्म, तप कर्म होगा, एरिया भी हो, और
क्रिया कर्म
कैसे होगा?
नहीं होगा, सुन
वो श्रेणी का है ना, क्रियाकर्म छोड़कर सब, क्रियाकर्म में समय दृष्टि जो नीचे से संयतों तक लेते हैं,
सातवें गुण होते हैं,
चौथे से पांचवे छठे सातवें तक लेते हैं। तप कर्म स्वीकार है, इरियापद स्वीकार है, पांच ही हो गए, लोक का असंख्यातवा भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है, सब पदों के लिए गठित किया। क्योंकि जब वो केवली समुदात कर रहे हैं उस समय भी प्रयोग समवदान वगैरह होगा ही होगा, और अधक कर्म का तो हमने वो तो एक जीव का भी होगा तो भी पूरा लोक स्वीकार कर ही दिया है इस तरह से भी उसको, क्योंकि वो नौकर्म स्कंदों की बात है वहां पर। इसी प्रकार संयतों के कहना नहीं ऊपर, इसी प्रकार केवल ज्ञानी कोमा कोमा लगा लो अकशाई केवल दर्शनी और यथाख्यात विशुद्धि संयत जीवों के कहना चाहिए तथा इसी प्रकार संयतों के कहना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म का क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग है। देखो इसमें क्रियाकर्म एक्स्ट्रा है जो उनमें नहीं था। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टियों के कहना चाहिए तो उनमें भी छहों कर्म पाए जाएंगे। इस प्रकार क्षेत्र अनुयोग द्वारा का हुआ कथन समाप्त हुआ। अब स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। अब हमको स्पर्शन समझना है, स्पर्शन में कौन कौन से अपेक्षाएं लगते हैं बोलो।
अतीत काल की अपेक्षा
सभी हमको 10 पद चाहिए। हाँ नहीं, स्पर्शन में कौन कौन से क्षेत्र में स्पर्शन संबंधी क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या हमको कंसीडर करना है लक्ष्मी? वो 10 पद होते, 10 पद होते। हाँ बोलो बोलो लक्ष्मी बताइए। वो पद 10वां नंबर पहले बताए कोई
कोई चलो
देख दे, पहले स्वस्थान फिर विहार व स्वस्थान, फिर अभी मारणांतिक ले, उसमें भी वेदना कषाय वैक्रेक मारणांतिक तेजस आहार केवली और फिर लास्ट में उपपाद। फिर से देखो स्वस्थान के दो, स्वस्थान विहार व स्वस्थान, उसके बाद समुद्घात को लेना, उसमें समुद्घात में वेदना पहले लेना, फिर कषाय फिर वैक्रेक फिर मारणांतिक, ये तो हुए, फिर तेजस आहारक और केवली समुद्घात, ये तो यहाँ तक समुद्घात की बात हुई। और एक उपपाद, उपपाद यानी जन्म का पहला समय, जिसके मारणांतिक में प्रदेश फैले हुए है उसका वो उपपाद का दंड जो दीर्घ दंड है उसकी कैलकुलेशन की अपेक्षा इसका क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए। अब ये अतीत काल की अपेक्षा लेते हैं तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी जीव से पहले मनुष्य संख्यात हो गए, परंतु अगर हम उसका स्पर्शन देखते हैं तो वो सूक्ष्म में भी उत्पन्न हुए थे कभी ना कभी, तो पूरा लोक लेते हैं। इस तरह से ये सभी अपेक्षाओं से हमको सोचना है। अभी बाकी समुद्घात कितना है वो तो वो लोक का संख्यात जो कुछ यथायोग्य होगा, परंतु यहाँ तो मारणांतिक में तो पूरी एरिया कवर होती है, इसलिए विशेषता विहार और मारणांतिक की बात एक्स्ट्रा सोचनी है हमको। ये तो स्पर्शन में ये बात होगी। देखो अभी देखते हम स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ से सब पदों का अतीत और वर्तमान की अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र के समान है। सब पदों का हमने क्या क्या देखा था ओघ में, सब पदों का में हमने देखा था कि प्रयोग कर्म समवदान और अधक कर्म तो पूरा लोक था,
पूरा लोक
था। इरिया पथ और तप कर्म में तीन अपेक्षा बताए थे और क्रिया कर्म में लोक का असंख्यात भाग बताया था, है ना? तो ऐसा ही इसमें लागू होगा। अब इस स्पर्शन में थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा किसकी है?
हाँ,
अभी बताएंगे इतनी विशेषता है करके बताएंगे। इतनी विशेषता है कि देखो क्रिया कर्म में क्षेत्र में क्या बता था, लोक का असंख्यात भाग, क्योंकि सम्य दृष्टि लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। अब यहाँ स्पर्शन में क्रिया कर्म देखना है तो स्पर्शन में सम्य दृष्टियों का स्पर्शन में मारणांतिक उसका विहार हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो कहते क्रिया कर्म का पेज नंबर 101 स्पर्शन अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। आप कहेंगे नारकी समय दृष्टि भी ऊपर मारणांतिक करेंगे कि नहीं करेंगे?
वो तो मनुष्य लोग से
हैं, तो वो बीच वाले एरिया में से करेंगे तो लोक का असंख्या तो भाग ही घटित होता है। हाँ, ये इतना कैसा घटित होगा?
तिरियंच
मारणांतिक करते हैं, देव विहार के काल में मरते हैं, ये मारणांतिक करते हैं, वो सब उसमें आ जाते, विहार भी और मारणांतिक भी 8/14 में सबको इंक्लूड कर दिया। तो ये क्रियाकर्म का 8/14 होता है, कुछ कम 8/14 भाग। ये तो ओह की बात हुई। अब कहते हैं नरक गति में नारकियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का स्पर्शन वर्तमान की अपेक्षा क्षेत्र के समान है, क्योंकि वर्तमान में तो लोग के असंख्यात विभाग में रहते हैं। अब यहाँ तो हमें मारणांतिक की अपेक्षा देखना है। अतीत काल का आश्रय कर मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा, उपपाद कौन कहाँ करेगा? तीर्यंच नीचे जाने वाला लेना, क्योंकि उपपाद अवस्था में वो नारकी होना चाहिए। हम नारक की बात करें ना, उपपाद हुआ तो नरक गति में उपपाद हुआ है। नारकी अगर उप यानी मरकर तीर्यंच में जाते वो तीर्यंचों का उपपाद कहलाएगा। ये नरक गति में जो हम सोच रहे हैं तो उसकी अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। ये कुछ कम क्यों कहा? हाँ तेज, पूरा 6 क्यों नहीं कहा? नीचे
1000 योजन
जो पृथ्वियां होती है नीचे ऊपर 1000 योजन छोड़कर बीच में उनके बिल 1000 योजन, हाँ इसलिए वहां से हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए कुछ कम कहते। क्रिया कर्म का वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान ने लोक का असंख्यात भाग है और अतीत स्पर्शन भी क्षेत्र के समान ही है। क्यों? क्योंकि नारकियों में अतीत की अपेक्षा है क्या? यानी सम्यक्तों के साथ मनुष्यों में मारणांतिक करने वालों की बात
नहीं, ये नारकी को लेना है, नरक में जाने वाले की अपेक्षा, नरक गति की बात है ना।
तो मारणांतिक में वो कौन है? नरक है का कौन सा
है? मनुष्य में उत्पन्न
मारणांतिक में वो नारकी ही है, परंतु वो कहाँ से वो मारणांतिक करता है? तो बीच वाले 45 लाख योजन में से, भले ऐसी हाइट उसकी 6 राजू होगी फिर भी उसकी विड़ तो 45 लाख योजन है, वो लोक का असंख्या तो अभाव है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए, यानी सातवीं पृथ्वी में बाकी वैसा ही होगा। विशेषता का इतनी विशेषता है कि यहाँ क्रिया कर्म का मारणांतिक और उपपाद पद नहीं होता, क्योंकि क्रियाकर्म में इसका अर्थ है सम्यक्तों के साथ यहाँ कोई मारणांतिक नहीं करेगा, क्योंकि मरण यहाँ मिथ्यात्व में है और मारणांतिक भी मिथ्यात्व में ही जाके करता है। और दूसरी उपपाद कोई समय दृष्टि यहाँ तो उत्पन्न होता नहीं है, वैसे अन्यत्र भी नहीं हो रहा है दूसरे या तीसरे चौथे पांचवें छठे नरक में, परंतु यहाँ तो ये पद ही नहीं है उसके, तो क्रिया कर्म में यह है ही नहीं है। हाँ, जो ऊपर क्रिया कर्म के पद है छठे से भी वो सम्यक्तों के साथ जाता है, परंतु लोक के असंख्यात भाग में से जाएगा, ये कहना चाहते हैं। अब यही रुकेंगे हम, अपने समय तो हो गया इसका। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।